खजूरे जमीन पर न गिरने पाए।
अब्दुल्ला वो टोकरी जरा इधर लेके आना, जल्दी से लेके आओ।
तेजी से काम करो, जल्दी करो,
इधर लाओ।
ज्यादा गर्मी हो रही है।
अरे मजदूरों के लिए पानी लेके आओ, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना बह रहा है।
इस हफ्ते के आखिर में खजूरों के आधे हिस्से को फरोख्त के लिए मदीने के बाजार में भेज देंगे और बाकी खजूरों को दूसरे शहरों में ले जाएंगे। इस नखलिस्तान से होने वाला मुनाफा बनता है तकरीबन 1,500 दिरहम।
1,500 दिरहम
इतना ही है।
बहुत अच्छा मुनाफा है।
अगर आप चाहें तो जिस तरह खजूरों को चुनने के काम की निगरानी करते हैं उनकी फरोख्त पर भी नजर रख लें।
हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है।
ये आपकी जरा नवाजी है।
मेरे वालिद तुम्हारी अमानत की तारीफ करते रहते हैं।
हम उनके खानजाद हैं।
मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह कामयाब ताजिर बनूं, इसीलिए उन्होंने मुझे अकेले सफर पर भेजा है।
आपके वालिद की कामयाबी में कोई शक नहीं है। उम्मीद है आप भी एक दिन उन्हीं की तरह बन जाए, एक मशहूर और कामयाब ताजर।
लेकिन मैं शाम से मदीने इसलिए नहीं आया हूँ कि सिर्फ खजूर के बाग को देखूं, बल्कि एक अहम इरादे की और अम्र ने मुझे इस सफर पर आने पर मजबूर किया है।
वो जरूरी काम क्या है जिसने आपको मदीना आने पर मजबूर कर दिया है?
तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि मेरे वालिद को कुछ नहीं बताओगे।
इसमें क्या मसलहत है?
हकीकत यह है कि मैं एक मौजू को समझने के लिए सफर पर आया हूँ।
किस चीज को समझने?
शाम में ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही जो खुद को पैगंबर कहता है।
आप मोहम्मद की बात कर रहे हैं?
लेकिन ये मालूम है कि उसके दीन में मुसावात की तरफ बुलाया जाता है। वो लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की तलकीन करता है।
वो एक खुदा की परस्तिश की तबलीग करते हैं।
तो फिर तुम उसको जानते हो?
मैंने उनका दीन कबूल कर लिया है।
मेरे वालिद की इजाजत के बगैर?
मैंने खुदा के हुक्म पर इस्लाम कबूल किया है।
अलबत्ता इस बात का ताल्लुक मेरी जात से है, लेकिन क्या तुम उसको पहचानने में मेरी मदद कर सकते हो?
जो मुझसे हो सकता है मैं उससे दरियाग नहीं करूंगा।
मैं चाहता हूं उससे मिलूं और उसकी बातों को सुनूं। मुझे उसके पास ले चलो।
हम कल सुबह होते ही उनके घर जा सकते हैं।
किसी किस्म की राह रिवाज तो नहीं है या पहले से मांगी की जरूरत तो नहीं?
उनके घर का दरवाजा सबके लिए खुला है।
अब जब तय पा गया है कल मोहम्मद से मिलने जाएंगे तो बेहतर है उनके लिए कोई तोहफा ले चले। सबसे मुनासिब चीज जो हम ले सकते हैं वो क्या हो सकती है?
वो दूसरों से तोहफों की तवक्को नहीं रखते और जो चीज उनके पास है उसको मुसलमानों में तकसीम कर देते हैं।
लेकिन खाली हाथ जाना भी तो अच्छा नहीं है।
अब जब के आप इसरार कर रहे हैं तो बाग के खजूर लेकर जाएंगे।
हाँ ये सही है, किसी एक ऊंट पर खजूर लदवा दो।
ये बहुत ज्यादा है, बेहतर है कि सिर्फ एक छोटी ताली भर कर अपने साथ ले चले, इस तरह वो खुश हो जाएंगे।
नाजीज तोहफा, डरता हूँ उनको हम पर गुस्सा ना आ जाए।
पैगंबर का घर इस गली में है।
अभी बहुत रास्ता बाकी है क्या?
बस इसी गली के आखिर में है।
इस पुरानी गली में
ये पैगंबर का घर है।
क्या तुम्हें यकीन है हम सही जगह पर आए हैं? तुम गलत तो नहीं कर रहे हो?
आप ये बात क्यों कर रहे हैं?
क्या मतलब है भाई? खुदा के रसूल जिनके इतने ज्यादा पैरों, इस सादा घर में रहते हों वो भी इस बगैर किसी मुहाफिज के, क्या ये मुमकिन है?
अनहजरत फरमाते हैं कि वो दूसरों की तरह है और उनकी मानिंद जिंदगी बसर करते हैं।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीनन घर की जाहिरी शक्ल दूसरों को धोखा देने के लिए है और अंदर एक शानदार महल वाक़ होगा।
जब आप अंदर जाएंगे तो सब कुछ नजर आ जाएगा। अभी बेहतर है दरवाजा खटखटाएं।
ठहरिए, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।
सलाम अलैकुम भाई।
वालेकुम अस्सलाम जनाब।
ये ज़ैद इब्न हारिस उसी नखलिस्तान के मालिक हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। रसूल खुदा से मिलने के लिए आए हैं।
सरा ठहरिए ताकि मैं उनको इत्तला दे दूँ। अली इब्न अबी तालिब उनके यहाँ मेहमान हैं।
जी जी।
ये तुमने क्या किया है? गुलाम से मुआनका किया और उसे कांधों पर बोझा दिया?
मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस्लाम की तालीमात में मसावात और उखवत भी शामिल है।
मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ कि मैं अपने गुलाम के साथ बराबर हूँ। ये मजाक खेज है।
आइए तशरीफ लाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं।
क्या तुम मुतमईन हो कि यही रसूल का घर है? क्या ये वो वही नबी है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं?
या रसूल अल्लाह, ज़ैद इब्न हारिस शाम से आए हैं ताकि खजूर के बाग के तरीके कार का मुआयना करें। वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे।
आपकी शोहरत का चर्चा शाम में फैला हुआ है और हर गली और कूचे में आपकी बात ही हो रही है। मैंने सोचा जब मदीना आया ही गया हूँ तो कम से कम आपसे मुलाकात ही कर लूँ।
खुश आमदीद नौजवान, उम्मीद है तुम्हारा सफर बाबरकत होगा और बहुत अच्छी फसल काटोगे।
अत्तफाकन इस साल की फसल बहुत ज्यादा उम्दा और मरगूब थी, लेकिन एक थाली तोहफे के तौर पर आपके लिए लाया हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा बहुत नाचीज है।
मैं तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
ज़ैद के जहन में बहुत से सवालात हैं। मैंने मुनासिब समझा कि आप खुद ही उनके जवाबात दें।
जो तुम चाहते हो पूछो।
जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना उस वक्त से लेकर मदीने में मेरे कदम रखने तक, अभी तक आपकी खिदमत में पहुंचने तक, जो कुछ मैंने देखा और सुना वो दूसरे शहरों और कबीलों के हुक्मों और आमदीन के तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। सादा और बगैर मुहाफिजों की जिंदगी, बंदों और गुलामों के साथ उठना बैठना, ये कैसा दीन और ईमान है?
मैं खुदा का रसूल हूँ जिसने सबको बराबर खल्क किया है। बनी आदम के दरमियान कोई फर्क नहीं है सिवाय उनके नेक अमल और ईमान के, जो उनको उसकी बारगाह में बरतर या पस्त करार देता है। मैं भी दूसरों की तरह हूँ, गोश्त पोस्त और खून से भरा हूँ, उन्हीं की मानिंद जिंदगी बसर करता हूँ और उन्हीं की तरह वफात पाऊंगा। अगर कोई मकाम मंजिलत है तो नेक किरदार, सोच और कौल की वजह से है।
बेहतर है मैं उनका इम्तिहान करूँ ताकि उनकी बातों की सेहत मेरे लिए बरमला हो जाए। अगर मैं दीन इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा?
तुम्हें खुदा एकता पर ईमान लाना होगा और शहादत देनी होगी कि मोहम्मद उसके पैगम्बर है,
और दिल की गहराइयों से अपनी बातों पर अकीदा रखना होगा।
लेकिन मुसलमान होने से पहले मेरी शर्त है।
आपने कहा एक शर्त है,
वो क्या है?
जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी कमीज पुरानी हो चुकी है और उसकी कई जगहों पर टाके लगे हुए हैं, मेरी शर्त यह है कि आप मेरे पास मौजूद 12 दिरहम को दोस्ती की रस्म के तौर पर कबूल कर लें और अपने लिए एक मुनासिब लिबास तैयार करें। जब आप नई कमीज पहनेंगे तो मैं भी ईमान ले आऊँगा।
मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूँ।
ये कैसी शर्त है? रसूल के कमीज के मामले का आपके मुसलमान होने के साथ क्या ताल्लुक है?
शायद इसमें कोई हिकमत है जिससे हम ला इल्म हैं।
मैं अपने तय ठोस दलील रखता हूँ।
इसकी दलील हमें भी बता दीजिए।
जब काम खत्म हो गया तो उसका राज बता दूंगा।
अली मेरे प्यारे, پیسے لے لو اور بازار لے جاؤ اور ایک قمیص خرید.
جی یا رسول اللہ.
اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں تاکہ پسند کرنے میں ان کی مدد کر سکوں.
تو پھر اٹھو کیونکہ وقت کم ہے. رسول خدا کی اجازت سے.
بہتر ہے ان کے لیے سب سے خوبصورت قمیص خریدی جائے. وہ دکان جو چوک کے کنارے ہے گویا اس میں بہترین کپڑے ہیں.
اچھی قمیص مدینے میں کہیں نہیں ملتی ہے. یمنی کپڑے جو دمشق کے اور درزیوں کے ہاتھوں سے سلے ہوئے ہیں دیکھیے کتنے نرم اور ملائم ہیں.
یہ کتنے کی ہے؟
میں یہ آپ کے لیے 9 درہم میں دیتا ہوں.
مجھے اس سے زیادہ قیمتی کپڑا چاہیے.
وہ قمیص جو اس کونے میں ٹنگی ہوئی ہے وہ میں 11 درہم میں دے دیتا ہوں. بہت زبردست.
مجھے 12 درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے. یہ ایک جوہر کی طرح میں دکان میں چمک رہی ہے. اس کی قیمت 12 درہم سے بھی زیادہ ہے. لیکن آپ کو اس کی قیمت پر دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کو اس قمیص کے لائق سمجھتا ہوں.
میں یہی لے جاتا ہوں. یہ لو اور اس سے خیر حاصل کرو.
شکریہ شکریہ.
اپنے انتخاب پر خوش ہو.
اس سے بہتر لباس بازار میں موجود نہیں ہے.
اس سے بھی بہتر موجود ہے لیکن دل لگا کر تلاش کرنا چاہیے تب ملے گا. بہتر چلیں.
کتنا اچھا ہوا کہ میں نے یہ بہانہ بنایا کہ اس کو رسوا کر سکوں. وہ پیغمبر جو سادگی کا دعویٰ کرتا ہے خود سب سے قیمتی قمیص پہن لے گا.
کتنی خوبصورت قمیص ہے. جنتیوں کے لباس کی طرح لگ رہی ہے.
اس کو چھو لیں اور لطف اندوز ہو جائیں.
حقیقت میں یہ ایک اچھا لباس ہے لیکن میرے لیے اس سے زیادہ معمولی قمیص بہتر ہے.
آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری شرط یہی ہے.
مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں نئی قمیص پہن لوں جو تمہارے سکوں سے خریدی گئی ہو لیکن تم نے اس کی قیمت مقرر نہیں کی. تم نے کہا کہ میں مناسب لباس پہنوں اور یہ لباس میرے لیے مناسب نہیں.
آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن
مزید بہانہ نہ لائیے.
علی یہ دکاندار کو واپس کر دو اور اس سے سادہ قسم کی قمیص لے لو.
ہاں یا رسول اللہ میں اس کو واپس کر دیتا ہوں. اے زید تم بھی میرے ساتھ چلو.
بازار میں انتظار کرتے رہو تاکہ ہم بھی آ جائیں. میں چاہتا ہوں اس لباس کو جو میں پہنوں گا خود پسند کروں.
سستی قمیض موجود نہیں تھی. اس نے پیسے واپس کر دیے.
کیا اس نے رغبت اور خوشی کے ساتھ یہ کام کیا؟
جب میں نے یہ ماجرا سنایا تو وہ مان گیا.
آپ تو بازار کو جانتے ہیں. کہتے مناسب لباس کہاں سے ملتا ہے؟
اس بازار میں جو چیز قابل قبول ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. اس سے اوپر والے سرائے میں جانا پڑے گا جو چند گلی چوڑ کر اس طرف ہے.
کیوں انہوں نے اتنی اچھی قمیض کو قبول نہیں کیا؟ اپنے اس عمل کے لیے ان کے پاس کیا دلیل تھی؟
میری بہن مجھے معاف کیجیے. کیا آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے؟
آپ کچھ نہیں کر پائیں گے.
آپ بتائیے شاید ہم کچھ کر سکیں آپ کے لیے.
بلا وجہ اصرار کر رہے ہیں آپ لوگ.
اے محمد بہتر ہے ہم چلے جائیں.
یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو معاف کیجیے. میں نے آپ کو نہیں پہچانا. میں نے سوچا آپ دوسرے لوگوں کی طرح ہیں جو صرف سوال کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں.
آپ بتائیے ہمیں بھی پتا چلے کہ کیا ہوا.
گھر کے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ چیزیں خریدوں لیکن جب میں بازار مدینہ پہنچی تو کچھ میرے پاس تھا وہ گم ہو گیا. اب میں گھر واپس جاتے ہوئے ڈرتی ہوں.
کیا آپ نے اطراف کی گلیوں میں اچھی طرح سے ڈھونڈا ہے؟
کئی مرتبہ پورے راستے میں ڈھونڈا ہے میں نے لیکن سکے مجھے نہیں ملے.
اے علی پیسے کی تھیلی مجھے دے دے. ٹھہریے یہ سکے لے لیجیے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ خرید لیجیے اور گھر لوٹ جائیے.
मेरी जाना पर कुर्बान हो आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई।
खुदा अपने बंदों को सख्ती के वक्त तन्हा नहीं छोड़ता।
मैं आपकी मशकूर हूँ, मैं चली जाती हूँ ताकि देर ना हो जाए।
ये आपने क्या किया, इतनी आसानी के साथ आपने सारे पैसे कनीज को दे दिए?
वो दिरहम किसके थे?
अलबत्ता मैंने आपको दे दिए।
तो उनके मालिक खुद पैगंबर हैं
और उन्होंने चाहा कि वो एक मोहताज को वो पैसे दे दिए जाएं।
हो सकता है कि उस औरत ने झूठ बोला हो।
मुतमईन रहो, अगर उसने झूठ बोला होगा तो तुम्हारे नाम पर नहीं लिखा जाएगा। अहम बात यह है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के सामने जिम्मेदार हैं। हम सब, अब काफी है, बहुत देर हो गई, बेहतर बाजार चले और अपने लिए उस दुनिया के लिए मुनासिब लिबास।
हम दूसरों के सिलसिले में जिम्मेदार हैं।
हम दूसरों के सामने जिम्मेदार हैं। कैसी अजीब बात है ये।
मैं यहाँ पर एक फेरी वाले को जानता हूँ, मेरे ख्याल में जरा आगे होगा।
सस्ती कमीज और कपड़े, जल्दी करो, अच्छे और उम्दा कपड़े।
सलाम हो आप पर ऐ बुजुर्ग आदमी, सलामत रहिए।
खुदा का दुरूद हो आप पर ऐ मोहम्मद अभी।
सलाम हो तुम पर।
सलाम है खुदा अली इब्न अबी तालिब पर। मेरे लिए क्या हुक्म है?
रसूल खुदा एक लिबास खरीदना चाहते हैं।
मैंने आपसे कहा कि बेहतरीन लिबास तुम्हारे पास है।
आपकी मेहरबानी है, मेरे पास जो कुछ है वो रसूल अल्लाह का है।
मेरे साथ भी दूसरों जैसा बर्ताव करो और जो है वो इंसाफ के साथ मुझे बेचो।
इसको देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी।
जरा मुझे देखने दो।
ये जो तुम्हारे हाथ में है कैसा है, क्या इसको पसंद करते हो?
नहीं, अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में वो वाली बेहतर है। ये कैसी है?
मुनासिब और अच्छा रंग है।
इसकी सिलाई भी मजबूत है।
इसकी कीमत कितनी है?
बहुत सस्ती है। अगर इसके लिए 4 दिरहम दे देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा।
तुमने मेरे और दूसरों के दरमियान कोई फर्क तो नहीं रखा है?
आप यकीन कीजिए, सबके लिए यही कीमत है।
हमारे पास तो ज्यादा पैसे है, लिहाजा आए इससे बेहतर खरीद लें।
तुमने खुद उसको पसंद किया है और हमने भी कबूल किया है।
लेकिन
लीजिए ये सिक्के ले लीजिए।
खुदा का शुक्र है। मैं नाबीना हूँ, मेरी मदद करो। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। एक सिक्के का कपड़े का सवाल है ताकि मैं अपने आप को ढाक सकूं। जो भी मुझे कपड़ा पहनाएगा खुदा उसको जन्नती कपड़े पहना।
ये लीजिए, ये कमीज है, अपने आप को ढाक लीजिए।
आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया।
ये मेरा फर्ज था।
ये आवाज जानी पहचानी लगती है, गोया मैं उसको जानता हूँ। तुम कौन?
खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ।
खुदा तुम्हें जजाए खैर दे और जन्नत में मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ महशूर फरमाए।
ये शख्स खुद
आराम से बेहतर है यहाँ से चले। मेरे साहब
घर की जानिब?
नहीं, बाजार चलें और बचे हुए पैसे से एक और कमीज खरीदें।
या रसूल अल्लाह, आप और कारगुजार थक गए हैं, आप जरा यहाँ आराम कर लें। मैं खुद बाजार जाता हूँ, कमीज खरीदता हूँ और फौरन वापस आ जाता हूँ।
मैं भी आपके साथ आता हूँ।
अगर आना चाहते हो तो जल्दी करो।
एक शानदार लिबास कबूल नहीं करता, उसके पैसे अजनबियों को बख्श देता है और अपनी कमीज दे देता है किसी नंगे को ढांपने के लिए। ये कैसा शख्स है? मैं चाहता था उसको आजमाना, अब वो मुझे इंसानियत का दर्स दे रहा है। सबके सामने हम जिम्मेदार हैं, कैसी अजीब बात है ये।
वो शख्स जो लोगों का रहनुमा और पेशवा बनता है, उसको चाहिए कि लोगों को तालीम देने से पहले अपने आप को आजमाए। चलो हम पहुंचने वाले हैं।
अली और जैद आ गए।
लीजिए, वही कमीज है उसी रंग के साथ। मुबारक हो आपको।
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जैद। اب بہتر ہے گھر چلیں اور اسلام کے آداب تمہیں سکھاؤں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی، اب تمہاری باری ہے کہ اپنے وعدے پر عمل کرو۔
کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس نے اپنے سکے کھو دیے تھے؟
کیوں نہیں، وہی ہے۔
دیکھا دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ اے خاتون، یہ بتاؤ تم اپنے گھر اب تک کیوں نہیں گئی؟ ایسا تو نہیں کہ تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا؟
ذرا ہمیں اس کی بات سننے دو، اس کے بعد تم فیصلہ کرو۔ کیا ہوا؟
وقت گزر گیا ہے اور دیر ہو گئی ہے، میں ڈرتی ہوں کہ گھر کا مالک مجھے ڈانٹے گا۔
ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
تم ہمیں گھر دکھاؤ تاکہ ہم جا کر تمہاری سفارش کریں۔
کیا یہ کام آپ میرے لیے کریں گے؟
ہاں، تم آگے چلو اور ہمیں راستہ دکھاؤ۔
اس طرف سے چلیے۔
ٹھیک ہے، تم آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے آ جاتے ہیں۔
جی اچھا۔ یہ میرے مالک کا گھر ہے۔
اے صاحب خانہ، السلام علیکم۔
دیکھا آپ نے، کہا تھا میں نے کہ یہ پوری کہانی اس کی جھوٹی ہے، ہم سب کو ایک خالی مکان میں لے آئی ہے۔
اے صاحب خانہ، السلام علیکم۔
اگر آپ کل تک بھی یہاں رہیں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہم کو چاہیے۔
سلام علیکم یا رسول اللہ۔
سلام تم پر اے مرد۔
تم پر بھی سلام ہو۔
سلام رسول خدا کے اصحاب پر۔
اے مرد، کیوں اتنی دیر سے دروازہ کھولا؟
جب میں نے پہلی بار پیغمبر کی آواز سنی تو اتنی دل نواز اور پیاری لگی کہ میں نے چاہا کہ ایک بار پھر اس کو سن لوں تاکہ میرے گھر کی برکت کا باعث ہو۔
ہم سفارش کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔
کس کی سفارش کے لیے یا رسول اللہ؟
اے خاتون، ذرا قریب آؤ۔ یہ خاتون اس گھر کے مکینوں میں سے ہے، گویا اس نے ذرا دیر کر دی اور اپنے گھر آتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے دیر کرنے کی وجہ وہ خود بتائے گی، اس کو بخش دو اور تنبیہ نہ کرو۔
یا رسول اللہ، اب جب اس عورت نے آپ کی پناہ حاصل کی ہے، آپ کی تشریف آوری کے احترام میں میں اس کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں۔
خداوند تمہارا پشت پناہ ہو۔ اے خاتون، چلی جاؤ اور اپنی آزادی پر خوش رہو۔
خدا کی قسم، اس سے زیادہ خوشی کا دن میری پوری زندگی میں نہیں تھا۔
اپنی کنیز کو بخش دیتے اور آزاد کر دیتے ہو۔
لوگ اس بات کو سیکھ لیتے ہیں جو ان کے قائد انجام دیتے ہیں۔
زید، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ اپنی شرط کا راز بتا دیں۔
اگر اجازت دیں تو یہ راز میرے اور میرے خدا کے درمیان باقی رہے۔
یہی بہتر رہے گا۔
اے اصحاب، یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے؟ 2 لوگوں کو لباس مل گیا اور 1 کنیز کو آزاد کرا دیا
اور 1 گمراہ کو نجات۔ اب میں رسول خدا کے سامنے عزم و ولولے کے ساتھ اور اپنے اختیار سے پڑھ دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔